فَأَمَّا ثَمُودُ پس رہے سمود فَهَدَيْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں رہنمائی کی، ہم نے انہیں ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى لیکن افسوس کہ انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بھر کر رہنا، اندھا بن کر رہنا پسند کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ قوم سمود نے ہدایت لینے کی بجائے گمراہی کو لینا پسند کیا۔ تو اندھے کون ہوتے ہیں؟ ویسے تو یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ دیکھ تو سکتے تھے، وہ دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ کائنات میں جو اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان کو پا کر جو ہے وہ ہدایت کو حاصل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے ان کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اور قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اور یہ قوم جو تھی یہ بھی قد و قامت، ڈیل ڈول اور قوت میں قوم عاد سے کچھ کم نہیں تھی۔ فن تعمیر جو ہے اس میں پتھروں کو تراش کر جو ہے وہ اس کی وہ بہترین انجینئر قوم تھی۔ پہاڑوں کے اندر پتھر تراش تراش کر صرف یہی نہیں کہ مکان بنا رہی تھی، بلکہ راستے بنا کر پہاڑوں کے اندر بھی انہوں نے آبادیاں اور بستیاں قائم کر رکھی تھی، لیکن یہ اللہ کی نافرمان قوم تھی۔ فاستحبوا، اب آپ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نون سین تا یا سین تا جو ہے یا الف سین تا اس کے معنی ہوتے ہیں مانگنا۔ تو فاستحبوا انہوں نے محبت کی، انہوں نے خوب چاہا، العمى اندھا بن کر رہنا، الہدا یہاں پہ الا جو ہے یہ انسٹیڈ کے معنی میں ہے، مقابلے میں۔ انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا بن کر رہنا جو ہے اس کو پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر کار ہم نے جو ہے فَأَخَذَتْهُمْ پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ تو آ پکڑا ان کو صَاعِقَةُ الْعَذَابِ عذاب نے، صَاعِقَة نے، اور صَاعِقَة جو ہے شدید عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سخت چنگاڑ اور زلزلے کی شکل میں آنے والا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ سائقہ کے کڑک کے عذاب سے پکڑ لیا۔ الہونی جس کے اندر ذلت بھی پائی جاتی تھی، یعنی شدید عذاب تھا اور اس کے ساتھ الہون جو ہے ذلیل کرنے والا، بما کانوا یکسبون، اور ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا تھا، یہ اس وجہ سے بھیجا تھا بما اس چیز کے بدلے، ما کانوا یکسبون جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی گمراہی اور بدعملی کی وجہ سے ان پر جو ہے یہ عذاب بھیجا تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ لوگ جو کہ گمراہی سے اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے کون لوگ بچتے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ایمان لانے والے بچتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ متقیانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم ثمود کا ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح یہ میری نافرمان قومیں تھیں اور کیسے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو اہل مکہ جو ہے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ آیت نمبر جو ہے یہ آیت نمبر 14 جس میں عذاب کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی آیت 14 کے ساتھ آپ آیت 15 کو دیکھیں، تو جب یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے پاس پیش کی، اس کے سامنے پڑھی۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کو پتا ہے نا کہ کمپرومائز کرنا یا سمجھوتا کرنا، اس کی کچھ تجاویز لے کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات جو تھی وہ پڑھ کر سنائی تھی۔ جب آپ ان آیت پر پہنچے، ان آیات پر جو عذاب والی ہیں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، और जल्दी से उसने आपके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे ये खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ये अजाब फौरन ही नाजिल ना हो जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उन्हें डराया था। आप देखें ये आयत नंबर 13 में है ना कि बस अगर वो इनकार करें तो आप इनसे कहिए कि मैं तुम्हें ऐसी कड़क से डराता हूं जैसी कौम आद और समूद पर गिरी थी। तो जब उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अजाब का सुना तो फौरन आपके मुंह पर हाथ रख दिया और वो रोने लगा और उसको ये खतरा हुआ कि आप जो बात कहते हैं वो तो सच निकलती है, कहीं ऐसा ना हो कि फौरन हम पर अजाब जो है वो नाजिल ना हो जाए। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी नाफरमानियों की बिना पर कौम आद और कौम समूद को चुना है, और दूसरी तरफ अहले मक्का जो थे वो कौम आद और समूद के मुकाबले में इनकी कुछ भी हैसियत नहीं थी, कुछ भी हैसियत नहीं थी। जितनी मालो दौलत और ताकत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था उसके मुकाबले में इनकी कुछ भी हैसियत नहीं थी। फिर आप देखिए कि अहले मक्का क्या कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे और कयामत का इनकार कर रहे थे, आखरत का इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 24 तक एक तरफ अल्लाह ताला ने उन्हें जो है इस बात का एहसास दिलाया है कि कयामत आकर रहेगी, दूसरी तरफ कि तुम जो शिर्क करते हो ये वहां पे कुछ भी काम नहीं आएगा, तीसरी तरफ बताया है कि इंसान के अपने जिस्म के अज़ा जो हैं वो उसके खिलाफ गवाही देंगे। बड़ी ही सख्त और जबरदस्त किस्म की आयात हैं। वयौम युहशरु अदाउल्लाही इलन्नारी फहुम यूज़ऊन। और जरा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। वयौम युहशरु, युहशरु के अंदर तीन बातें पाई जाती हैं, इसमें एक तो है जमा करना, यानी किसी को जो है वो जमा करना, इकट्ठा करना, ये आपने पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ा है, तो इकट्ठा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो है इसके मानी इसके अंदर जो दूसरी अहम बात पाई जाती है उसमें है कि किसी को जो है वो हांकना, किसी को हांकना, जैसे इकट्ठा किया और उसके बाद जो है फिर उनको हांकना शुरू किया। और तीसरी एक अहम बात भी इनमें पाई जाती है कि जैसे उनको जो है किसी खास मकसद की तरफ लेके जाना, यानी इकट्ठा करना, किसी एक मकाम की तरफ लेकर जाना और उनको पीछे से कोई हांके भी, तो तीनों बातें पाई जाती हैं। अल हशर, अल जम, मासूक, लोगों को उनके ठिकानों से किसी एक मकाम की तरफ ले जाना, उनको इकट्ठा करना और पीछे से उनको कोई हांक भी रहा हो। और वो दिन ऐसा दिन होगा कि युहशरु के घेर कर लाए जाएंगे, हांका जाएगा, इकट्ठे होंगे वो अदा उल्लाही अल्लाह के दुश्मन इलन्नारी दोजक की तरफ जाने के लिए। फहम यूजाउन, और यूजाउन जो है ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, वो जा आयन इसका रूट है और इसके मानी है जमात बंदी। एक इसके मानी होते हैं कि किसी के अंदर तरतीब पैदा करना, तरतीब से उनको खड़ा कर देना। दूसरे इसके मानी होते हैं कि अलग अलग जो ग्रोह हैं उनकी दर्जा बंदी करना, कि एक ग्रोह अलग है, दूसरा ग्रोह अलग है, तीसरा ग्रोह अलग है। तो जैसे एक ग्रोह के लोग जो हैं उनको पहले रोक कर रखा है, रोक रोक कर जब वो जमा हो गए हैं उनको अलग करके फिर दूसरा ग्रोह। तो तरतीब बंदी भी है, दर्जा बंदी भी है, नज्मो जब्त भी है और डिसिप्लिन भी है। ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी ना, रब्बे औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया, वहां पे भी आपने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर है फहुम यूज़ऊन, और फिर उन्हें जो है तरतीब वार किया जाएगा, उनकी ग्रुप बंदी की जाएगी। और किसी ने तर्जमा किया है इसका कि फिर उन्हें जो है वो रोक कर रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बस एक ग्रोह आया और उसका फैसला कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सारों को इकट्ठा करने के बाद نسل پر نسل آتی جائے گی، قوموں پر قومیں آتی جائیں گی، سب کو ٹھہرایا جائے گا، سارے آثار اور نتائج کا جائزہ لیا جائے گا، گواہیوں کو جمع کیا جائے گا، پھر محاسبہ ہوگا، انصاف ہوگا اور عدالت اللہ کی قائم ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ان کا حساب جو ہے وہ چکا دیا جائے گا۔ ایک شخص اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے، اس کے آثار اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ مرنے کے بعد بھی مدتوں جاری رہتے ہیں، اور انسان ان تمام اثرات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جنریشن، ایک نسل اپنے دور میں جو کچھ کرتی ہے، اس کے اثرات بعد کی نسلوں میں صدیوں رہتے ہیں، اور وہ اس ورثے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے گا۔ فَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے ایک طرف محاسبے سے ڈرایا جا رہا ہے، دوسری طرف احساس دلایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، ایک وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، تم چلنا نہیں چاہو گے، تمہیں پیچھے سے فرشتے ہانکیں گے، مجرموں کو اکٹھا کریں گے، حشر کے میدان کی طرف انہیں لایا جائے گا، اور ان کا انجام جہنم ہوگی۔ حتی اذا ما جاءوها شهد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جو سب وہاں پہ پہنچ جائیں گے، حتی اذا ما جاءوها، جب وہ سب کے سب وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شہید علیہم سم اہم، شہید علیہم سم اہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، و اب سوارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلود اہم، اور ان کے جسم کی کھالیں، بما کانو یا عملون، کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں مجرم جو ہے وہ اتنا ڈھیٹ بن جائے گا کہ جو انہوں نے گناہ مجرموں نے کیے ہوں گے وہاں پہ انکار کرتا چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے قوت گویائی چھین لیں گے اور حکم دیں گے کہ اس کے جسم کے اعضاء کو زبان دی جائے اور وہ بولنا شروع کرے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اعضاء انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کی آیات بھی ملتی ہیں، آپ پہلے بھی آیات جو ہیں پڑھ چکی ہیں کہ جسم کے اعضاء انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، سورۃ نور میں آپ نے پڑھا، سورۃ یاسین میں آپ نے پڑھا، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ شرک کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے جسم کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو حواس خمسہ ہیں، ان میں سے سم اہم و ابصارہم کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے سننا، اور دوسرا ہوتا ہے دیکھنا، اور تیسرا ہے جلدیں، جلود، اور جلد جو ہے اس کے اندر جیسے کسی کو چھونا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جلد پر ہی جیسے کوئی چیز رکھی جاتی ہے سکن پر تو انسان چیز کو سونگتا ہے۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جلود کے لفظ میں تین حواس آ جاتے ہیں، جس میں سونگنا بھی ہے، اس میں چکھنا بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ چھونا بھی ہے، وجلودہم کے اندر۔ اور ویسے دو جو ہے وہ حواس خمسہ کا ذکر کیا گیا ہے، سننا اور دیکھنا، اور چھونا اور چکھنا اور سونگنا وہ جلود کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ جلود جلد جو ہے اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو انسان یہ جسم کی جو اعضاء ہیں وہ انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور یہ بڑی ہی سخت آیت ہے، یہ بڑی ہی سخت آیت ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جنہیں ساری زندگی انسان جو ہے وہ سنوار سنوار کر رکھتا رہا، انہیں جو ہے وہ خوبصورت بنا کر رکھتا رہا، ان کے لیے کریم، لوشن، ہیٹ اور اے سی اور کھانے پینے کا انتظام اور ان کے آرام کا انسان خیال کرتا رہا، تو یہی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سکن سپیچ، موجودہ سائنس نے اس نظریے کو پروف کیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے تو اس کے جسم کی سکن پر اس کی جو آواز کی لہریں ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سکن کے اوپر سے जो है उनको सुना जा सकता है, जिस तरह मशीनी तौर पर रिकॉर्ड की ही आवाज को दोबारा सुना जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान की जो खाल है उस पर जो आवाजों के असरात मुरतब होते हैं उनको भी सुना जा सकता है। तो प्यारी बहनों, याद रखिए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला अपनी निशानियों से पहचाना जाता है। अल्लाह ताला जो है वो हर लम्हा देख रहा है कि इंसान जो है वो क्या कर रहा है। अल्लाह ताला यहाँ पे बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ए इंसान, तू जो है वो मेरी बड़ाई को तस्लीम कर ले। जमीनों आसमान की अजमतें अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम कर रही हैं। तो ए इंसान, तू छोटा सा है, चंद फुट का, तो तू क्या कर, आद और समूद की तरह इनकार ना कर, जिन्होंने अल्लाह की बड़ाई को जब तस्लीम ना किया तो वो खंडर बनकर रह गई वो कौमें। फिर उनके लिए मनहूस दिन थे, फिर अच्छे दिन नहीं थे, उनके लिए अजाब के दिन थे। तो यहाँ पे लोगों को जो है वो तकवा का रवैया इख्तियार करने के लिए तवज्जो दिलाई जा रही है। और इंसान दुनिया में जो कुछ करता रहा होगा उसके जिस्म के अज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। वकालू, और लोग कहेंगे, वे जलूद हैं अपनी खालों से, लिमा शाहिद तुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। कालू, खाले कहेंगी, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शैइन वहुवा खलककुम अव्वल मर्रा, वही हमें उसी खुदा ने बोलने की ताकत दी, अंतकना कुव्वते गोयाई दे दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाह जी जिसने, अंतका कुल्ल शैइन जिसने हर चीज को बोलना सिखाया है, वहुवा खलककुम और उसी ने तुमको पैदा किया था, अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा, वह इलैहि तुरजाउन और उसी की तरफ तुम्हें जो है वो लौट कर जाना है। अब आप देखें कि घर में भी कभी ऐसा होता है ना कि फोन आता है और घर वाले वालदैन बच्चे से कहते हैं कि जाकर कह दो कि मैं सो रही हूं या सो रहा हूं, तो बच्चा जाकर कहता है कि अम्मी कह रही है, अबू कह रहे हैं कि वो सो रहे हैं ना, हालांकि अगर वो सो रहे थे बोलते कैसे। या नौकर जो है वह दरवाजा नॉक होता है और नौकर कहता है, उसी वक्त नहीं जवाब देता, कहता है मैं पूछ कर आता हूँ, फिर कहता है कि नहीं वो लोग मौजूद नहीं है या कोई भी बात। तो बाज़ औक़ात नौकर चाकर बच्चों से घर वाले झूठ बुलवाते हैं ना, लेकिन उनका झूठ जो है वो आयां हो जाता है। अब आप देखें कि इंसान जो है वो अल्लाह के दरबार में अल्लाह के सामने जब झूठ बोलेगा तो इंसान के जिस्म के अज़ा जो है वो इंसान के खिलाफ जो है वो गवाही देंगे। ये बड़ी सख्त बात है, यानी उसका अपना वजूद उससे बेगाना हो जाएगा, उसका अपना वजूद उसके खिलाफ गवाही देगा, इससे बढ़कर अजाब क्या हो सकता है। तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम अपने इस जिस्म को, अपने इन अजा को जो है वो जन्नत के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर जो है वो अजाब के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आप देखें कि इंसान जब कोई भी काम करता है, दुनिया से आप छुप जाएं, आप अल्लाह से तो नहीं छुप सकते, आप अपने अज़ा से तो नहीं छुप सकते। आप जो कुछ भी करते हैं, आपके होंठ, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका सर, आपकी रगें, आपकी जिल्द, आपकी जिस्म की जो अज़ा हैं वो सारे आपका साथ देते हैं ना, तो कयामत के दिन ये जिस्म के अज़ा जो है वो इंसान के खिलाफ गवाही देंगे अगर वो मुजरिम होगा। और इंसान बड़ा हैरान होगा, कहेगा कि तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो। तो जिस्म के अजाब बोलेंगे, जिल्दे बोलेंगी, कहेंगी कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बोलने की ताकत दी है। आपने सूरत जिलजाल में भी पढ़ा है ना कि कयामत के दिन जमीन बातें करेगी, वह अखरजतिल अर्दु अस्कालहा वकालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा। फिर आयत नंबर 22, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहदा अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, वमा कुंतुम, और नहीं थे तुम, तस्ततिरूना छुपते, और तुम लोग जो थे पर्दा नहीं करते थे। तस्ततिरून के एक मानी तो छुपने के हैं कि जब तुम गुनाह करते थे तो तुम जिस्म के अज़ा से छुपते तो नहीं थे। दूसरे इसके मानी मुफस्सरीन ने खौफ के भी किए हैं कि जब तुम गुनाह करते थे तो जिस्म के अज़ा से तुमने तो खौफ किया ही नहीं था, तुम्हें इस बात का डर ही नहीं लगा था कि जिस्म के अज़ा तुम्हारे खिलाफ जो है वो गवाही भी दे सकते हैं। फमा कुन तुम तस्ततेरुना, तो तुम दुनिया में जरायम करते वक्त जो थे वो क्या करते थे कि दुनिया में गुनाह करते वक्त जो थे वो खौफ नहीं करते थे, नंबर एक। नंबर दो, तुम छुपते नहीं थे। यशद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, तुम्हें तो ख्याल भी नहीं आया था कि गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, और वला अबसारुकुम, और ना ही तुम्हें ख्याल आया था कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, वला जुलूदुकुम, और ना ही तुम्हें कभी यह ख्याल आया था कि तुम्हारे जिस्म के चमड़े तुम्हारी खालें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, वलाकिन ज़नन्तुम अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की तो अल्लाह को खबर भी नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी ही सख्त बात जो है वो कही जा रही है कि ए इंसान, तुमने तो ये सोचा था कि तुम जो कुछ भी करते हो तो तुम्हारे अमाल की अल्लाह को कोई खबर ही नहीं है, तुमने अल्लाह से छुपने की जरूरत महसूस नहीं की। हजरत अली रजी अल्लाह ने एक मौके पर कहा, जब गुनाह करने को तेरा दिल चाहे तो किसी ऐसी जगह चले जा जहां पे खुदा ना हो। फिर हजरत अली रजी अल्लाह का एक और बड़ा ही खूबसूरत कौल है कि गुनाह के छोटा होने को ना देख, बल्कि उस हस्ती की अजमत को देख जिसकी तू नाफरमानी करता है। यहाँ पे अल्लाह ताला जो गुनाहगार हैं उनको मलामत कर रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि लोगों कयामत का दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। तुम लोगों से तो छुपते थे लेकिन तुम अल्लाह से कभी छुपे ही नहीं, तुमने अल्लाह से कभी पर्दा ही नहीं किया, तुम भूल गए कि अल्लाह तो अलीम है, अल्लाह तो खबीर है, अल्लाह तो बसीर है, अल्लाह जो है वो कदीर है, अल्लाह को तो हर बात की खबर है, तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और यहां तक के तुम अल्लाह के दरबार में जो है वो पहुंच गए। वलकिन ज़नन्तुम, बल्कि तुमने तो ये समझा था, अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून, कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर नहीं है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि वो लोग जो थे वो अल्लाह के नाफरमान लोग थे। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम, और ये तुम ही तो थे कि तुमने गुमान किया, अल्लज़ी ज़नन्तुम बिरब्बिकुम, कि तुमने जो है तुम्हारे ख्याल ने, अल्लज़ी वो जो ज़नन्तुम तुमने ख्याल किया था, बिरब्बिकुम अपने रब के बारे में, ये तुम ही तो थे कि जिन्होंने अपने रब के बारे में ये गुमान किया था, यानी तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था उसने क्या किया, अर्दाकुम। अर्दाकुम जो है इसके मानी है कि उसने तुम्हें जो है वो हिलाक कर दिया, अर्दाकुम उसने तुम्हें जो है वो हिलाक कर दिया, गारत कर दिया, तबाह कर दिया, तो तुम्हारे इस गुमान ने तुम्हें तबाहो बर्बाद करके रख दिया। तो ये लोग क्या करते थे कि ये अल्लाह की हदों को तोड़ते थे और उसकी नाफरमानी करते थे, और इसी वजह से ये लोग जो हैं ये लोग तबाहो बर्बाद हो गए, ये लोग हिलाक हो गए। अब आप देखें कि हिलाक होने के लिए आपने कुरान में कई लफ्ज पढ़े हैं, और उन्हीं में से एक जो है ये अर्दा का है, और ये जो हिलाक होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे अगर आप पिछले और भी लफ्ज पढ़े, और कौन कौन से लफ्ज आपने पढ़े थे, जैसे आपने जो है वो तदमीरा का पढ़ा था, आपने जो है वो तबारा का लफ्ज जो है वो आपने पढ़ा था, आपने दमदमा पढ़ा, दमरा पढ़ा, और ये जो लफ्ज है इसका रूट है रा दाल या, रा दाल या, और इसके मानी है किसी चीज को बुलंदी से जमीन पर दे मारना, किसी चीज को बुलंदी से जमीन पर दे मारना, या जमीन से किसी गड्ढे में पटक देना कि वो हिलाक होने को पहुंच जाए। यानी कुएं या गड़े में गिरकर हलाकत को पहुंच जाना, कुएं गड़े में गिरकर हलाकत को पहुंच जाना, तो ये है यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि तुम्हारा ये जो गुमान था ना कि अल्लाह को तो पता ही नहीं चलेगा और तुम सबसे तो डरते और छुपते रहे, ना अल्लाह से डरे ना अल्लाह से छुपे, इसी ने तुम्हें जो है वो हलाकत में डाल दिया। फर्स्ट बात तुम मिनल खासरीन, और इसी की वजह से तुम जो है वो खसारा करने वालों में शामिल हो गए। फयसबिरु फन्नारु मसवल्लहुम, बस इस हालत में वो सबर करें या ना करें, बस आग ही उनका ठिकाना है। वयस्तातिबु फमा हुम मिनल मुतबीन, और अगर वो रजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका उन्हें दिया न जाएगा। वयस्तातिबु वयस्तातिबु, और आगे जो मोतबीन है ये इसी आयत में ये बहुत ही अहम है, और इसके मानी क्या हैं? इसके दो मानी बयान किए जाते हैं, यस्तातिबू और अलमोतबीन के दो मानी बयान किए जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। एक है माफी चाहना, यानी जब वो उजर पेश करेंगे माफी चाहेंगे तो भी उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें माजूर नहीं समझा जाएगा, एक इसके मानी ये हैं। नंबर दो, अगर वो मनाना चाहेंगे, यानी वो चाहें कि अल्लाह को राजी कर ले मना ले और जन्नत में चले जाएं, तो ये भी उन्हें हासिल नहीं होगा। तो ये जो लफ्ज है ये राजी करना, रजामंदी तलब करना, मनाने की कोशिश करना, ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो लोग तौबा करते हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं ना, तो एक तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो है अताब, अताब से है, जैसे अताब जैसे सरजनश मलामत, और बाज लोग कहते हैं कि तीन टांगों पर जो चलने वाला है या एक पांव पर कूदने वाला, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पांव पे चलना, तो ये क्या है, ये सख्ती है ना, किसी पर गुस्सा है। तो बहरहाल इसके दो मानी तर्जमे में भी अगर आप मुख्तलिफ कुरान के तर्जमे को आप खोलेंगे तो कहीं आप पढ़ेंगे इसका तर्जमा कि अगर वो तौबा करेंगे तो बस उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, तो कुछ लोगों ने इसका तर्जमा तौबा का किया है। तो जब इंसान तौबा करता है तो वो अल्लाह को राजी करता है ना, और कुछ लोगों ने जो है वो इसका तर्जमा किया है तौबा करने की बजाय, उन्होंने इसका तर्जमा किया है कि अगर वो चाहेंगे कि वो उजर पेश करके अल्लाह को मना लें तो वो मना नहीं सकेंगे। और बात वैसे अगर आप गौर करें तो बात जो है वो एक ही है, यानी अगर वो उजर पेश करेंगे तो भी वो माजूर नहीं समझे जाएंगे, और अगर वो तौबा करेंगे तो उनकी तौबा जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो अल्लाह को मनाना चाहेंगे कि अल्लाह को मना के अल्लाह को राजी करके वो जन्नत में दाखिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक तो ये तर्जमा किया गया है। दूसरा तर्जमा क्या है कि वो लोग जो है वो चाहेंगे कि किसी तरह तौबा इस्तगफार के जरिए कुछ भी वो उजर पेश करके अल्लाह को राजी कर ले, और बहुत ही बारीक सा ये फर्क है जो यहाँ पे पेश किया गया है। वहीं यस्तातिबू फमाहुम मिनल मुतबीन, कि अगर वो रुजू का मौका चाहेंगे तो उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। मसलन अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें दुनिया में वापस भेज दिया जाए ताकि वो इस अजाब से निकल सके, तो उनकी तौबा और माजरत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो ये जो आयात हैं इससे हमारे लिए अमल के क्या उसूल निकलते हैं जो आज हमने पढ़ी हैं, आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 24 तक। इसमें पहली बात जो हमारे सामने आती है कि ये कायनात जो है ये अल्लाह का शाहकार है। जमीन जो है उसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का एहसास दिलाया है, और आसमान की पैदाइश के जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी कमाल दर्जे की कुदरत और अजमत का एहसास दिलाया है। तो क्या होना चाहिए कि नेमत के एहसास से दिल जो है मुनिम के लिए भर जाए मोहब्बत के जज्बात से, और अल्लाह की जब कमाल और अजमत का इजहार हो तो फिर दिल के अंदर खौफ पैदा होना चाहिए। तो पहला अमल का उसूल ये निकलता है कि शुक्रगुजार बने, तरह तरह की नेमतें जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी हैं तो उस सिलसिले में हम ना शुक्र ही ना करें। आज जो मस्जिद में यहाँ नमाजी आते हैं बहुत से, और एक नमाजी जो है मतलब उनकी फैमिली को आज यहाँ पे आए हुए पूरे 3 माह हुए थे यहाँ पे मिसिसागा में, और पीछे से पाकिस्तान से पंजाब के रहने वाले। तो जो है वो मेरे शोहर ने मुझे बताया कि उनकी बीवी जो है वो बीमार है और कैंसर की मरीज है, और उनका कोई यहाँ पे वाकिफ वगैरह भी नहीं है। फिर उसके बाद जैसे कोशिश की उनकी याद तीमारदारी जो भी कर सकते थे, और फिर उसके बाद आज सुबह उनका फोन आया कि वो कोमे में चली गई हैं। फिर उसके बाद दोपहर में जोहर के करीब 1 बजे के करीब फिर फोन आया कि उनकी डेथ हो गई है, और यानी बिल्कुल जैसे नए हैं, कुछ नहीं पता क्या करें, उसका तजहीज और तकफीन का इंतजाम क्या कुछ। तो फिर मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई, और फौत हुए कुछ वक्त गुजर चुका था, और यहाँ पे जैसे अमेरिका में और कनाडा में रहते हुए मैयतों को नहलाने का इत्तफाक हुआ, और उसमें जैसे वो मैयतें जो के हॉस्पिटल से आती हैं बीमार होते हैं लोग, और उसमें से बाज औकात क्या होता है कि उसकी जो नालियां और जो चीजें पेशेंट के मरीज के अंदर डाली हुई होती हैं, जैसे आईवी वगैरह लगी हुई है और ब्लड वगैरह के लिए या खुराक के लिए, तो बाज औकात वो नहीं उतारी हुई होती, उसी तरह बस वो उसको फारिग कर देते हैं और बस उसको डेथ हो गया तो ढांप दिया। तो जब मुझे यहाँ पे डेथ का पता भी चला तो मैंने पहली बात ये कही कि आप उन्हें फोन पर बताएं कि औरत के हाथों को बिल्कुल सीधा कर दें, उसकी टांगों को सीधा कर दें और उसके मुंह को बंद कर दें, क्योंकि अगर थोड़ी देर गुजर गई तो फिर जिस्म अकड़ जाता है, फिर मुंह खुला रहेगा और हाथ सीधे नहीं हो सकते और टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। और बाज औकात अगर जो पेशेंट के मरीज के जो घर वाले हैं अगर वो ख्याल ना करें तो ये लोग हाथों को सलीब बना देते हैं। पिछले दिनों एक मैयत नहलाने के लिए आई जिसके हाथों की सलीब बनी हुई थी, यानी और जैसे आखिरी टाइम में या डेथ के बाद इन्होंने जब सलीब हाथों की बना दी, यानी उनको क्रॉस की शक्ल में सीने पर रख दिया, तो अब वो नहीं सीधे हो सकते क्योंकि वो अकड़ गए हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने यहाँ पे इसना में एक मैयत नहलाई, और उसकी एक टांग, जैसे जब मुर्दा मरता है इंसान की जान निकलती है तो टांगे भी मारना, हाथ मारना, जो अल्लाह ताला रहम करे जो सकराते मौत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सकराते मौत से अल्लाह की पनाह मांगी है। तो उस वक्त जो है वो डेथ के फौरन बाद घर वालों की जो भी करीबी दोस्त अहबाब है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुर्दे के जिस्म के अज़ा को बिल्कुल सीधा कर दें। तो मैंने फोन पर भी बताया, और लेकिन जब मैं गई तो उसके हाथ भी सीधे नहीं थे, उसका मुंह खुला हुआ था, मुंह के अंदर भी जो थी वो मतलब वो नाली सी डली हुई थी और हाथों को भी चीजें लगी हुई थी, और घर वाले पास खड़े हुए रो रहे थे। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि आप सबसे पहले ये काम करें कि उनके मर्दों को तवज्जो दिलाई कि इनके जिस्म मैयत की जो जिस्म है इसके ऊपर से सारी ये चीजें जो है वो हटाई जाएं। और बच्चे जो थे वो जब वो नर्स आई और हटाने लगी तो बच्चे नाराज होने लगे कि हमारी माँ को तकलीफ दे रही है ये ना, तो फिर उनको भी समझाया और बल्कि फिर बताया कि आप लोग अपनी वालदा के लिए जो है वो दुआ करें। फिर उसके बाद उनको ये भी बताया कि फिर पता चला कि ये लोग मैयत को पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, गरीब भी, फिर यहाँ पे जॉब भी नहीं। फिर उनको समझाया, हदीस भी सुनाई और दूसरे तरीके से भी कि सारी जमीन अल्लाह की है। तो उन्होंने कहा, हालांकि वो यहाँ के यानी सिटीजन थे, कभी सिटीजनशिप लेके चले गए हुए थे, और अब आए थे, और जाहिर है कि बच्चे जवान हो गए हैं तो फिर आएंगे पढ़ेंगे इधर और शायद अभी रह भी जाएं, लेकिन उनका ये था कि नहीं हम इनको वहां लेके जाना चाहते हैं। और आपको पता है कि जब मैयत यहाँ से कहीं दूर जाती है तो फिर जो है उसके अंदर से चीजें निकाल कर उसकी बॉडी के अंदर केमिकल्स भरे जाते हैं ताकि मैयत जो है वो खराब ना हो, और उसमें मैयत की फिर बेहुर्मती भी होती है, मैयत को तकलीफ भी होती है, और इसमें कितने दिन गुजर जाते हैं। तो बहरहाल उनको समझाया भी और उदास भी थे वो लोग, रो भी रहे थे, और मैं उस वक्त सोच भी रही थी कि ऐ इंसान ये है तेरी हकीकत। और बच्चे कह रहे थे कि आज हमें पूरे 3 माह हुए हैं, हम 18 जनवरी को यहाँ पे आए थे और आज 18 अप्रैल है, और हमारी वालदा का जो है ना वो इंतकाल हो गया, कैंसर था जिस समय फैल गया था। डॉक्टर ने कहा था कि बस ये कुछ दिनों की मेहमान है, गैब का इलम तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन असल बात क्या है कि जो है ये जो मौत का वक्त है वो किसी पर भी आ सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकती है, आखिर कितने दिन। और उस वक्त मैं हॉस्पिटल का जायजा ले रही थी और मैं सोच रही थी कि इंसान ये तेरी हकीकत है कि बस अब हमेशा के लिए वो खातून दुनिया से चली गई, और पीछे वाले जो हैं वो रो भी रहे हैं, और जो है वो अपनी वालदा से वो लोग मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं। और लेकिन जो असल बात है जिसपे हम सबको गौर करना चाहिए कि हम जो हैं अपनी आखिरत के लिए हमने क्या सामान तैयार किया है, क्या जातेरा तैयार किया है। तो जमीन में भी अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें दे रखी हैं, और आसमान भी अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है, और इन नेमतों में हदायत के बाद, हदायत कुरान इस्लाम की नेमत के बाद जो है वो इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इंसान के वालदैन बहुत बड़ी नेमत है। और आप देखें कि वालदा अगर बीमार ही रहती है 1 महीने तक या कुछ दिनों तक, तो कितने आजिज आ जाते हैं घर वाले, और बच्चे कितने मजबूर हो जाते हैं। और अब वो जवान बेटियां 9th में है या 10th में, 2 बेटियां 1 बेटे का साथ, और वालदा जो चली गई, और बाजुका तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं। मुझे खुद याद है कि जब मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हुआ 3री डिलीवरी पर, एक बेटी उनकी 1 साल की थी, दूसरी बेटी 2 साल की थी, और हमारे पास आई हुई थी वो डिलीवरी करवाने के लिए, और बच्ची वालदा फौत हो गई बहन हमारी, और वो जो छोटी बच्चियां थी वालदा रो रही थी, उनके पास जाती थी, उनसे प्यार करती थी, उनसे बातें करना चाहती थी बच्चियां, लेकिन वालदा बोलती नहीं थी, फौत हो चुकी थी। और उसके बाद जनाजा उठ गया, चला गया, तो मैं बच्चों को उन बच्चियों को देख रही थी, उन आ, 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 मेरी आपी की जूती पकड़ कर ना, जूतियां पकड़ कर, जूती मिलती थी तो जूती पकड़ कर रोती थी और हमारे पास लेकर आती थी, दुपट्टा नजर आ गया घर में तो उसका दुपट्टा लेकर हमारे पास आती थी, और छोटी थी अपने जज्बात और फीलिंग का इजहार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हमसे पूछती थी बताओ हमारी माँ कहाँ है, ना कहाँ गई है हमारी माँ, और बस बिलख बिलख कर वो बच्चियां रोती थी। और जब भी कभी मैं किसी की माँ का सोचती हूँ तो मुझे वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो मेरी आंखों के सामने थी वो मुझे याद आती हैं। फिर मुझे याद है कि जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो जैसे रात का इशा का वक्त होगा या उसके बाद, तो उस दिन हमारे घर के दरवाजे, पूरे घर के दरवाजे खुले थे, कोई किसी ने बंद नहीं किया, तो बाहर से कुछ लोग भी आए, चौकीदार भी, और कहने लगे कि रात का वक्त है और आपके दरवाजे बंद क्यों नहीं है। तो ये जब मौत का वक्त आता है इंसान के अंदर और कोई खौफ ही नहीं रह जाता, कोई और उसको फीलिंग नहीं होती सिवाय इसके कि अब मतलब इतना बड़ा ये हादसा जो है वो पेश आ गया ना। तो अगर ये कैफियत हमारी हर वक्त रहे कि हमें मरना है और अल्लाह के पास जाना है और इसका हमें खौफ आए, तो फिर हम असल में आखिरत की तैयारी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए, आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अनवाउ अकसाम की नेमतें मुझे और आपको दे रखी हैं, इसका जो है वो शुक्र करने वाला बनाए। नंबर 1, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर जिए। नंबर 2, अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें, न शुक्र ही न किया करें। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हजारों लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा रखा है, लेकिन आप देखें कि कितना मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर तीसरी बात जो बहुत अहम है, जैसे आज भी मैं सोच रही थी कि उस औरत पर बेचारी पर कितनी मुसीबत आई कि उसे कैंसर हुआ और इतनी सख्त तकलीफ के बाद, और फिर वो दुनिया से चली गई। मैं सोच रही थी मैं भी इस जगह हो सकती थी, मैं भी इस बिस्तर पर, इस मैयत की जगह मैं भी हो सकती थी, अगर अल्लाह मुझे इस आजमाइश में डाल देता तो मैं क्या करती। अल्लाह किसी को किसी वक्त भी किसी भी आजमाइश में डाल सकता है ना। तो हमेशा जो है वो क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जिस हाल में रखा है, मैं लाखों करोड़ों से अच्छी हूँ, ताकि मेरे और आपके अंदर शुक्र के जज्बात जो है वो पैदा हों। फिर तीसरी यहाँ बात हमें ये पता चलती है कि हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए और दुनिया की जिंदगी में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। चौथी यहाँ बात हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे जिस्म के ये अज़ा कहीं मेरे खिलाफ गवाही तो नहीं देंगे। और जैसे उस खातून का अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और मैं उनके बच्चों को रब इरहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा दुआ पढ़ा रही थी ना, उन बच्चों को वो नहीं आती थी। मैं कहती अच्छा तुम लोग उर्दू में कोई दुआ पढ़ो, जिसमें पंजाबी में पढ़ो, जिस भी जबान में, कि तुम अपनी वालदा के लिए ना इस वक्त दुआ करो, इसको आपकी मगफरत की दुआओं की जरूरत है। अच्छा अब इस मौके पे मैं उस मौके पे ये सोच रही थी कि आप हैं और मैं हूं, हमें सोचना चाहिए कि क्या मैंने अपने बच्चों को दुआएं सिखाई हैं जो ताजियत की दुआएं होती हैं, ताकि मेरे बच्चे मेरे ऊपर यानी जिंदगी का तो नहीं पता वो जिंदगी और मौत का कि किसको पहले आनी है, किसी को भी आ सकती है, बच्चों को आ सकती है, हमें आ सकती है, लेकिन अगर हमें पहले आ जाती है, मुझे पहले आ जाती है, तो मेरे बच्चे क्या मेरे लिए ताजियत की दुआएं पढ़ेंगे? क्या मेरे बच्चों को पता होगा कि जब मैं फौत हो जाऊंगी तो क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? ये ज़ाहिर तकदीर का फैसला है, उनको अल्लाह ताला के उस फैसले को कबूल करना चाहिए। फिर जल्दी से जल्दी मैयत को जो है वो तदफीन के लिए तैयार करना, ये भी हमें कुरान और हदीस से पता चलता है। फिर यानी अपने जज्बात की बजाय ये सोचना चाहिए कि मैयत के लिए किस चीज में बेहतरी है, मैयत के लिए किस चीज में बेहतरी है ना। तो मैंने और आपने क्या तैयारी की है, जैसे मसलन जब मैं उनको बच्चों को समझा रही थी कि आप अपनी वालदा की यही तदफीन कर दें, जमीन सारी अल्लाह की है, और वो हदीस भी है ना कि अगर कोई शख्स मरता है और कहीं दूर हो जाकर, यानी पैदा कहीं हुआ और फौत कहीं और होता है, तो अगर वहां उसको दफन कर दिया जाए दूर किसी मुसाफिरत में है वो, तो वो पूरा इलाका जन्नत में अल्लाह ताला उसके लिए लिख देते हैं कि अपनी जाए पैदाइश से वो जितना दूर फौत होता है। मैंने उनको ये हदीस भी सुनाई, फिर मैंने उनको सारा समझाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे वहां पे पीछे खानदान वाले लोग होंगे जो हमारी वालदा के लिए जो है ना वो दुआ करेंगे, और हम इनको हर सूरत जो है ना वो पाकिस्तान लेके जाएंगे। मैं खामोश हो गई। जाहिर है कि ऐसे मौके पर कभी भी इसरार नहीं करना चाहिए, बड़ी हिकमत के साथ, मोहब्बत और नरमी के साथ, क्योंकि वो मौका तकरीर का नहीं होता, वो दर्स का नहीं होता, वो इस तरह का नहीं होता, थोड़ा बहुत हिकमत के साथ, नरमी के साथ आप जो है वो समझा सकते हैं। तो बहरहाल उस मौके पर मैं भी यही सोच रही थी कि क्या मैंने अपने बच्चों को ये बताया है कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करेंगे, अपने वालदैन के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए क्या करेंगे, मैंने अपनी आखिरत की क्या तैयारी की है, मैं अपने वालदैन और दोस्त अहबाब के लिए क्या करूंगी। और इसके साथ ही जैसे उनका जब मुंह बंद नहीं हो रहा था, तो फिर क्या किया कि जाहिर है कि उन्होंने फौरन बांधा नहीं था, कोशिश की उसके मतलब जैसे एक स्कार्फ सा लेके उसको उससे बांधने की, फिर मुंह को और करीब करके थोड़ी देर जैसे टेप सी लगा के, ताकि थोड़ी देर में उतार देंगे लेकिन मुंह बंद हो जाए, क्योंकि नहलाते हुए पानी मुंह के अंदर जाता है। और फिर जैसे मैयत जाहिर है कि सब देखते भी हैं, तो फिर थोड़ी डरावनी सी शक्ल, और क्योंकि दांत बाहर निकले हुए हैं, जबान जो है वो दांतों के अंदर आई हुई है, जैसे कि उस खातून की जबान दांतों के अंदर थी। तो अल्लाह ताला बस हमें इज्जत की जिंदगी दे, सादत की जिंदगी दे, और इज्जत और सादत की मौत दे। अल्लाह ताला हम सबके अंजाम को अच्छा कर दे। और फिर अमल का एक उसूल ये निकलता है कि हम ना तकवा वाली जिंदगी बसर करें। जैसे फिर जब मैं घर आई, तो मैं जरा क्लास में थी, थोड़ी देर ही शुरू होने में थी, मैं फिर ये घर आए, मैंने इनसे पूछा कि क्या उनके लिए कोई खाने का इंतजाम भी है, तो मैंने कहा वैसे मेरी क्लास होने वाली है लेकिन फिर भी आप पूछें, तो जब फोन करके पूछा तो कोई खाने का इंतजाम नहीं था। तो बहरहाल मैंने सोचा कि दर्द भी बहुत आम है और खाना भी बहुत आम है। बहरहाल अल्लाह ताला ने मतलब कुछ बहनों ने मिलकर वो खाना तैयार किया और उनके घर जो है वो पहुंचाया गया। तो बाज़ औक़ात आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं पूछ लेती हूँ, आप पूछ लेते हैं, आप अपने किसी दोस्त अहबाब को तवज्जो दिला सकते हैं, अगर आप ये काम कर दें तो इससे मेरी और आपकी आखिरत बन जाएगी। और प्यारी बहनों, मुझे ये बात बहुत ही आम लगती है, दर्द देना बहुत आसान है, कोर्स करना भी बहुत आसान है, तकरीरें करना भी बहुत आसान है, क्विज में टॉप करना बहुत आसान है, ये सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आकर इनको नाफिज करना ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है और अहम बहुत है। तो जरूरत है इस बात की कि हम दुनिया की जिंदगी में जो कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं फिर उसको नाफिज करें। जैसे जानने वाले जो होते हैं जिनके, या जिनके पास दौलत होती है, सभी उनके साथ होते हैं। कोई मुसाफिर है, कोई अजनबी है, उसको कुछ जानने वाला नहीं है, तो फिर कोई भी उनका साथ नहीं होता। तो ऐसे मौके पे इंसान के इखलास का भी पता चलता है, खालिस अल्लाह की रजा के लिए फिर आप उनके साथ कितना सलूक करती हैं, कितना हुस्ने सलूक करती हैं। अच्छा, फिर एक और अहम बात जो इस वक्त मैं अपने और आपके सामने लाना चाहती हूँ कि रात के वक्त जब बिस्तर पर लेटे आप जरूर सोचा करें कि मेरे ये हाथ कयामत के दिन मेरे हक में गवाही देंगे या मेरे खिलाफ, मेरी ये आंखें मेरे हक में गवाही देंगी या मेरे खिलाफ। जैसे आज मैं जब हॉस्पिटल से आ रही थी तो स्टॉप पर एक लड़की और एक लड़का खड़े हुए गलत हरकतें कर रहे थे, तो एकदम मेरी उन पर नजर पड़ी और फौरन ही मुझे ख्याल आया कि मुझे गस्से पसर करना है। मैंने फौरन अपना रुख उनकी तरफ से हटाकर स्टॉप से मैंने दूसरी साइड पे कर लिया। बाज़ औक़ात क्या होता है, जब ये ख्याल नहीं रहता तो हम देखते हैं और उसमें एक लज्जत सी आती है कि अच्छा ये कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में हम बुरी बातें सोचने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को याद दिलाते हैं, आप अपनी नजरों को फौरन फेर लेते हैं, है ना, इसी तरह गीबत हो रही है, चुगली हो रही है, तो फिर मैंने मेरी जबान ने क्या किया था गीबत और चुगली के वक्त, मेरे कानों ने क्या किया। आज आज दिन भर में मैंने अपने कानों की कितनी हिफाजत की, कितना इनका गलत इस्तेमाल किया, मैंने अपनी आंखों का कितना गलत इस्तेमाल किया, और मेरी जो जिल्द है इसमें, इसके ऊपर जो कपड़ा पहनती हूं मैं, क्या वो हलाल की कमाई का है या वो हराम की कमाई का है, ये मुझे सोचना चाहिए। फिर इसके साथ ही मैं खुद तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन जो मेरे ऊपर और लोगों के जो हुकूक और फरायज है, क्या मैं उनको अदा करती हूँ, क्या मैं ज़कात देती हूँ, क्या मैं रिश्तेदारों से सिला रहमी करती हूँ, क्या मैं औरों का ख्याल रखती हूँ। फिर आप देखें कि मेरे कितने कपड़े हैं जो अलमारियों में पड़े हुए हैं, और साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाजों का 5 साल गुजर जाते हैं, उनको पहनने की बारी नहीं आती। कभी आपने अपना मुहासबा किया, कभी आपने अपना जायजा लिया कि मेरी कितनी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, आपके पास 5 जोड़े हैं या 10 जोड़े हैं, जो भी हैं, अगर आप नए नए भी अल्लाह के रास्ते में देती हैं, लेकिन अगर आप अपनी नई चीज बनाती हैं तो पहली जो इस्तेमाल शुदा चीजें हैं उनमें से कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं। बहुत से लोग बड़ी मोहब्बत के साथ वो लेते हैं और जरूरतमंद भी होते हैं, उनके काम आ जाते हैं। तो अगर हम नई चीजों को घर के अंदर जितनी तेजी से एंटर करते हैं अपनी अलमारियों में और अपने लिए, उतनी तेजी से जो पहले हमारे पास चीजें हैं उनको अल्लाह के रास्ते में निकालना भी चाहिए, और पुरानी के साथ साथ नई चीजों को भी अल्लाह के रास्ते में निकालना चाहिए। तो ये हमारी जबान, हमारी खाल, हमारी आंखें और हमारे कान और हमारा ये जिस्म के अज़ा हैं, ये सब हमारे हक में या हमारे खिलाफ जो है वो गवाही देंगे। और दूसरा ये कि कोई भी काम करूं तो मैं जरूर ये सोचूं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अकीदाए तौहीद और अकीदाए आखिरत जो है इसको मजबूत करना चाहिए। और फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं जो है अब दुनिया की जिंदगी जो मैं गुजार रही हूं, तो क्या कोई ऐसा उजर और बहाना है जो मैं अल्लाह के दरबार में पेश कर सकूंगी। जब भी कोई फर्ज जो है वो छोड़ देते हैं, जब भी कोई जबान से बदजबानी करते हैं, जब भी इन हाथों से ये हाथ किसी पे उठते हैं, ये आंखें किसी को घूरती हैं, ये आंखों से जब चुगली की जाती है, ये आंखों के साथ जब गीबत की जाती है, यानी आंखों ही आंखों में, इशारे ही इशारे में जब कुछ करते हैं, तो अल्लाह को फिर हम इसका क्या जवाब देंगे। तो ये सब बातें हैं जो मुझे सोचनी है, जो आपको सोचनी है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।